जिंदगी एक सफर है, रास्ते मुश्किल ही सही, हौसले गर हैं बुलंद तो मंजिले फिर दूर नहीं।
शांति। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में सदियों पहले सन्यासियों का एक आश्रम था। बहुत पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा आश्रम था और जो मुख्य आश्रम था वो बहुत दूर था, हेडक्वार्टर्स। ये उसकी एक छोटी सी शाखा थी पर्वतों में छिपी हुई, और यहाँ का जो लामा था वो बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसे एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी, और जो बड़ा आश्रम था हेडक्वार्टर्स, उसमें बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे सन्यासी थे। तो इसने, क्योंकि ये छोटा आश्रम है, उसका जो एक शिष्य था उसको एक संदेश लेकर इस बड़े आश्रम में भेजा कि तुम बड़े आश्रम में जाओ और जो हेड है वहां पर प्रमुख, उनसे विनती करो कि हमको एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो कि अब यहां का आश्रम देख सके। तो रास्ता बहुत कठिन था, दुर्गम था। ये जो शिष्य था, युवा शिष्य, ये निकल पड़ा बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता हुआ। साधन थे नहीं, पहाड़ी रास्ता था, बीच में कई सारे गांव थे, और सब कुछ पार करते हुए अंततः वो शिष्य इस बड़े आश्रम में, मुख्यालय में पहुंचता है। और जो वहां के प्रमुख होते हैं उन्हें वो संदेश सुनाता है जो वो लेकर आया था। जो प्रमुख थे वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे 100 लोग देता हूं शिष्य मेरे, पर ये कहता है कि मुझे तो एक ही चाहिए, हमारे गुरु ने कहा एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है। प्रमुख कहता है कि चिंता मत करो, एक ही रहेगा। और वो 100 लोग उस एक शिष्य के पीछे निकल पड़ते हैं इस रास्ते के लिए वापस उस छोटी जो शाखा है आश्रम में, वहां का प्रमुख बनने के लिए। और चलते चलते अचानक से नंगी तलवारें लिए सैनिक आ जाते हैं, कहते रुको, हमारे देश का जो राजा है वो मर गया है, और जो पुरोहित है उन्होंने कहा है जाओ जल्दी कोई एक सन्यासी को ढूंढो और उसी को यहां का राजा बना दो, तो हम आए हैं, तुम में से कोई भी तैयार हो तो आ जाओ। तो एक दो तैयार हो जाते हैं, पर उनके साथ और भी बहुत सारे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कहां उस छोटे से आश्रम में जाए, यहां थोड़ा राजा के राज्य में रहेंगे तो यहीं एक आश्रम खोल लेंगे। तो आधे लोग चले जाते उन सिपाहियों के साथ, और वो पूछते भी कि ऐसा हो सकता है कि हम आश्रम खोल सकते। वो कहता है अरे राजा, यहां का जैसे तुम ही, तो तुम में से ही कोई एक राजा बनेगा, तो जैसे तुम चाहो चलाना सबको, तुम्हारे लिए एक आश्रम भी खोल के देंगे, व्यवस्था होगी सारी, सारी सुख सुविधाएं होगी। आधे निकल जाते, 50 उस एक के साथ आगे बढ़ते हैं। और जैसे आगे आगे जाते हैं अचानक 4 सैनिक आते, कहते हमारे राज्य में बहुत बड़ा अनुष्ठान है, पंडित पुजारी की आवश्यकता है। 4 निकल के चले जाते। ऐसे बहुत सारे और प्रसंग होते, निकलते जाते और आगे बढ़ते। एक नदी आती है, वहां एक कन्या खड़ी रहती है, वो कहती है मैं उधर जाना है, मैं अकेले कैसे जाऊं, मुझे किसी की सहायता चाहिए। तो 3-4 उसकी सहायता में लग जाते, कहते हैं आप लोग आगे बढ़ो, हम बस पहुंच रहे। फिर और आगे बढ़ते, फिर और कुछ कारण से रुक जाते और आगे बढ़ते। एक को अपना गांव दिखाई देता है, कहता है कितने दिनों से लौकिक घर गया नहीं हूं, जब से आया हूं आश्रम में ही हूं, कितने साल बीत गए, अभी अपनी मां को देखना है, मेरे पिताजी क्या हो गया उनका, जमीन थी उसका क्या चल रहा है पता नहीं। तो वो वहां से निकल जाता है। फिर 2-3 और बचते हैं और आगे बढ़ते, और कुछ कारण बनते हैं, एक दो निकलते जाते हैं। कोई एक देखता है कहीं मंदिर बन रहा है, वहां पुजारी की आवश्यकता है, कहता है मेरे पास इतना सारा ज्ञान है, कौन जाएगा यहां पर वो छोटे से आश्रम में, छोटे सेंटर पर किसको जाना है, यहां पर अच्छा सब कुछ मिल रहा है तो यहीं रुक जाता हूं। लास्ट में वो एक सन्यासी जो शिष्य था मुख्य, और उसके साथ एक दूसरा साथी, ये दो ही बच जाते, मतलब उन 100 में से एक ही बच जाता है, और आगे जाते। जब ये आश्रम बिल्कुल ही निकट है, वहां एक गांव में पहुंचते, वहां पे एक व्यक्ति कहता है कोई है, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे से शास्त्रार्थ कोई कर सकता है क्या। हरा दूंगा। मेरे पास जो ज्ञान है ये सब बुद्ध और उसका वो धम्म सब व्यर्थ है। तो ये जो शिष्य होता है वो सहन नहीं कर पाता, इसको कहता है बुद्ध को गालियां दे रहा है, धम्म को गालियां दे रहा है, ये मैं सहन नहीं कर सकता। वो कहता है मैं इसको शास्त्रार्थ करके जब तक इसको हरा नहीं देता आऊंगा नहीं, तुम जाओ मैं बस पहुंच रहा हूं। तो वो वहां रुक जाता है। और हर एक ने अच्छे अच्छे कारण दिए थे, जो एक दो कन्या को मदद करने के लिए रुके थे उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का को रेफरेंस किया था कि कंपैशन, कोई दुखी है बेचारा उसकी दया तो दया भाव होना ही चाहिए। और आखिरी में जो शिष्य गया था लाने के लिए वो अकेला ही लौटता है, तो गुरु कहते हैं, वो कहता है आप बीती सुनाता है कि मैं अकेला ही लौटा हूं। ये गुरु कहता है मुझे पता था पहले ही कि तुमसे योग्य वहां पर कोई दूसरा है ही नहीं, ये तो मैंने तुम्हें केवल किसके लिए भेजा था, परीक्षा के लिए। इसके लिए कहावत है कि हजार जाते हैं पहुंचता एक ही है। आज की साकार मुरली मीठे बच्चे, यह है तुम्हारी याद की यात्रा, इसमें अलबेले नहीं बनो। हजार चालू करते हैं परमधाम तक कितने पहुंचते हैं? बीच बीच में बहुत सारी जगहें हैं जहां रुक जाते हैं, बीच से बहुत सारे काम हैं जो करने पड़ते हैं, कोई कहीं रुक जाता है, कोई कहीं रुक जाता है, किसी को दया भाव प्रकट हो जाता है कि जो नई आत्मा है उनको शरीर नहीं है, नई आत्मा है जो ज्ञान में आना चाहती है, हम भी तो निमित्त बने नई आत्माओं के लिए, कोई उस मार्ग पे चले जाते हैं। तो ये यात्रा कठिन यात्रा है, इतनी आसान यात्रा नहीं है। और बाबा ने याद के लिए यात्रा शब्द का प्रयोग किया है, इतिहास में आज तक किसी शास्त्र में, इतिहास में आज तक किसी धर्म गुरु ने, किसी तीर्थंकर ने, किसी शंकराचार्य ने, किसी ईश्वर पुत्र ने, किसी अवतार ने, किसी अरिहंत ने, किसी बुद्ध ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। सबने कहा भगवान का सिमरन करो, याद करो, पर यात्रा है ये किसी ने नहीं कहा। तो हमारा ये कौन सा सफर है? रूहानी सफर है, रूहानी यात्रा है। एक तो जीवन की यात्रा है, जब से ब्राह्मण बने तब से अंत तक, एक ये हमारी यात्रा है पहली यात्रा। बहुत सारी यात्रा है, पहली यात्रा तो है जीवन, जन्म की बर्थ और डेथ, मृत्यु तक की शरीर के। दूसरी यात्रा है ब्राह्मण जन्म और ब्राह्मण जीवन की मृत्यु, ये दूसरी यात्रा। तीसरी यात्रा है तीव्र पुरुषार्थ का जन्म और तीव्र पुरुषार्थ की मृत्यु, पहले करते थे अभी मर चुके हैं, तीव्र पुरुषार्थ में मर गए, ब्राह्मण जीवन में चल रहे पर तीव्र पुरुषार्थ मर चुका है। चौथी यात्रा है याद की यात्रा। पांचवी यात्रा है कार्मिक अकाउंट्स की यात्रा, कर्म भोग की यात्रा, यह भी एक यात्रा है। किसी एक आत्मा के साथ इतना कड़ा हिसाब है, इतना कड़ा हिसाब है, पर यह नहीं समझना वो जीवन भर चलेगा, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, हिसाब किताब का भी स्टार्टिंग और एंड है, तो वो भी एक यात्रा ही है। ऐसी ढेर सारी यात्राएं है हमारे जीवन की, ब्राह्मण जीवन की, उसमें से आज हम देखेंगे याद की यात्रा। तो इस याद की यात्रा में क्या क्या किया जाता है, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। दो तीन दिन पहले मुरली थी, वो है जिस्मानी यात्रा। उस जिस्मानी यात्रा में होता है आवाज, और यहां पर क्या है? साइलेंस नहीं, चुप नहीं, डेड साइलेंस। यहां पर क्या है? डेड साइलेंस। तो ये रूहानी सफर है, इसमें थकना नहीं है, इसमें अलबेले नहीं बन जाना है, इसमें रुकना नहीं है। और इस यात्रा में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, बहुत सारे प्रलोभन है, बहुत सारी चीजें हैं जो मन को खींचती है, बरगलाती है, ध्येय से अलग कर देती है। उस यात्रा में कम से कम 12 चीजें की जाती है, जिस्मानी यात्रा। तो दो कॉलम करने हैं, यह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। वहां जो जो कुछ किया जाता है वो सब कुछ यहां करना है। जैसे हम कहीं पर जाना चालू करते हैं, जैसे यहां से जाना है हमको दिल्ली, ठीक है, तो जैसे ही कहीं जाना है बहुत सारी चीजें चालू हो जाती है। सबसे पहला है प्लानिंग, प्लान करना है कहां जाना है, कब जाना है, कितने लोगों को जाना है, जाना है या नहीं जाना है और क्यों जाना है, एक। दूसरा होता है प्लानिंग हो गई, फिर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन चालू हो जाती है, तैयारी, पहले योजना बनाई फिर तैयारी, तैयारी में लगेज, सामान पैक करना, चीजें देखना, कौन कौन सी चीजें लेके जानी है, कौन सी चीजें नहीं लेके जानी है स्थूल यात्रा में। तीसरा बजट, खर्चा कितना आएगा, पहले से सोच के रखना है कि इस यात्रा में इतना खर्चा आने वाला है, ऐसे नहीं बस निकल जाना और बाद में आने के बाद पता चले इतना बड़ा लंबा चौड़ा बिल, इतना खर्चा हो गया। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट, कैसे जाना है, गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, बैलगाड़ी से जाना है, पैदल जाना है, जाना कैसे है। उसके बाद में भोजन, फूड, जाते समय खाएंगे क्या, खाएंगे कहां से, यहां यात्रा भोजन, तो यात्रा भोजन लेके जाना है या देखेंगे कहीं और से। उसके बाद में एकोमोडेशन, जाके रहना कहां है, उधर जा तो रहे पर रहेंगे कहां, होटल में रहना है, सेंटर में रहना है या और धर्मशाला में रहना है या और कहीं, यह भी देखना है। उसके बाद में उस यात्रा में गाइड कौन है, गाइड चाहिए रहता है, नई जगह जाओ तो गाइड चाहिए रहता, नहीं तो लोग क्या करते हैं, ठगते हैं, कभी कभी गाइड भी ठग देता है, वो दूसरी बात है। फिर उसके बाद में एवरी डे का टारगेट क्या है, जैसे कोई माउंट आबू में घूमने आया है, आज कितनी चीजें देखनी है, यहां पर दिलवाड़ा देखना है, पीस पार्क देखना है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, खाली ब्रह्मा कुमारी वाला देखना है या बाकी का देखना है, या खाली बाकी देखना है और ये छोड़ना है, टारगेट क्या है हर दिन का। उसके बाद में शॉपिंग, जाते हैं तो खाली हाथों लौट के आते नहीं है, कुछ तो वो चीज लेके आते हैं जो उस स्थान की यादगार है, किस लिए, दूसरों को दिखाने के लिए आने के बाद कि हम वहां जाके आए उसका या फिर मित्र संबंधियों के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। उसके बाद में अगला है रिचुअल्स, रिचुअल्स अर्थात अगर तीर्थ यात्रा गए तो वहां फिर स्नान करना है नदी में, वहां कोई अनुष्ठान करना है, देवी का कुछ करना है, ये उस यात्रा में देखा जाता है, या फिर पार्टी के लिए गए तो वहां पर पिकनिक, मतलब क्या और करना है वो चेक, तो अनुष्ठान। उसके बाद में एंटरटेनमेंट, यात्री लोग जाते हैं यात्रा करने तो गाते बीच में भजन गाते जाते हैं, वहां पहुंचने के बाद कुछ और साधन ढूंढते हैं जिससे थोड़ा मनोरंजन हो, तो उस यात्रा में मनोरंजन भी ढूंढा जाता है। उसके बाद में एंटी थेफ्ट मेजर्स, एंटी थेफ्ट मेजर्स अर्थात चोरी ना हो, तीन बैग लेके गए थे एक बैग गई उधर से चार लेके आ रहे थे, पहुंचे तो तीन गायब, वो तो आती है पर चोरी हो जाती है पूरी की पूरी, जितना यहां से खरीद। जैसे बीच में वो एक डॉक्टर आए थे माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में, यहां आने के बाद में दो बैग लेके आए थे और तीसरी बैग में इतनी सारी शॉपिंग की, यहां से माउंट की हर चीज खरीद ली, और जब वहां पहुंचे तो वो बैग गायब थी, थी एंटी थेफ्ट मेजर्स। उसके बाद में 11वां, उससे हमने सीखा क्या क्या, लर्निंग क्या क्या किया, और लास्ट में जब भी कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उसकी यादें रह जाती है, मेमोरीज जो दूसरों को सुनाते हैं, जीवन भर तक चलती है। ऐसी ये 12 चीजें हैं। कौन सी यात्रा में? जिस्मानी यात्रा में। इसका तो बहुत विस्तार है, तो पर अभी हम आएंगे रूहानी यात्रा। तो हमारी है रूहानी यात्रा, अर्थात याद की यात्रा, अर्थात ये स्थूल यात्रा नहीं है, ये बुद्धि की यात्रा है, ये अदृश्य यात्रा है, इनविजिबल जर्नी है ये। अब हम कहां जाते हैं? गुप्त है ये। तो आत्मा यहां पर है, ये परमधाम, ये परमात्मा है, बीच में और कुछ सूक्ष्म वतन। तो सबसे पहले जब योग में बैठते हैं तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए? प्लानिंग। पहली चीज प्लानिंग। अमृत वेले की प्लानिंग रात में ही डिसाइड कर लेनी है कि कल का जो अमृत वेला है मुझे किस तरह का करना है, कहां तक जाना है, सूक्ष्म वतन तक या ऊपर परम धाम तक, कि सूक्ष्म वतन से ही लौट के आना है कल। चालू कहां से करना है? सतयुग से चालू करूं, क्या करूं? अमृत वेले की प्लानिंग चाहिए। अगर प्लानिंग ही नहीं, कुछ नहीं, तो कितने सारे अमृत वेले पता नहीं ऐसे ही चले गए। क्या किया ना हमको पता है ना उस बाप को पता है, किसी को कुछ पता नहीं है। योजना चाहिए हर चीज की, हर चीज योजनाबद्ध हो, प्लानिंग चाहिए। तो याद की यात्रा की भी प्लानिंग करनी है, अमृत वेले की प्लानिंग, दूसरा नुमा शाम के योग की प्लानिंग। और प्लानिंग को इतनी हाईफाई ने दे देनी है अपने मन को कि उसके बोझ के नीचे तले दब जाए मन। हल्की सी प्लानिंग देनी है, सिंपल प्लानिंग देनी है, एकदम बहुत जो प्रैक्टिकल प्लानिंग हो। बाबा ज्ञान का सागर है, उसके साथ एक शब्द जोड़ दो, वो प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर है। तो ऐसी प्लानिंग करनी है जो कर सके, छोटी छोटी प्लानिंग। एग्जाम्पल, कल हम बाबा को दोस्त के रूप में याद करेंगे, तो पूरा अमृत वेला दोस्ती वाला, छोटी सी प्लानिंग कर ली। एक छोटा सा संकल्प का पदम गुना फल है संडे की मुरली, पूरा दिन उस संकल्प के आधार पर श्रेष्ठ हो जाएगा। पूरा दिन छोटा सा एक संकल्प ले लिया, केवल छोटा सा ही संकल्प, पर पूरा दिन महान बन जाएगा उससे। अगर अमृत वेला ही संकल्प ले लिया कि आज सारे दिन भर मुझे किसी एक विषय पर चिंतन करना है, तो अपने आप बुद्धि उस चिंतन में लगी रहेगी। अगर उसे कोई टारगेट नहीं दिया, कुछ लक्ष्य नहीं है, वो किधर के किधर भटकते रहेगा, कभी पास्ट में जाएगा, कभी अतीत में, कभी भविष्य में जाएगा, कोई भी विचार आएंगे उसमें दिशाहीन भटकेगा। तो सबसे पहला क्या करना है इस यात्रा में? प्लानिंग करनी है, फर्स्ट पॉइंट। जैसे उस यात्रा में प्लानिंग करते, यहां पर भी प्लानिंग करो। दूसरा प्रिपरेशन, तैयारी। क्या तैयारी करेंगे? युद्ध होने वाला है, सारे सैनिक कटिबद्ध हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, अस्त्र शस्त्र चाहिए, तो यहां पर भी तैयारी चाहिए। अमृत वेले की तैयारी, सबसे पहली तैयारी है जल्दी सोना। अगर लक्ष्य रखा है बहुत पावरफुल अमृत वेला करना है और सो रहे हैं 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और सो रहे हैं व्यर्थ चिंतन करते करते, टीवी देखते देखते, सीरियल देखते देखते, बातें करते करते सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, तो कैसे तैयारी नहीं हुई? तैयारी नहीं की तो कहां से अमृत वेला होगा पावरफुल? आदत अनुसार उठ तो जाएंगे, परंतु सुस्ती रहेगी, नींद रहेगी। फिर सहज प्राकृतिक कुदरती नेचुरल शक्तिशाली अमृत वेला हो, सहज, कोई खेचाधन नहीं उसमें, लड़ाई नहीं हो, एक तरफ नींद और एक तरफ हम, नींद जैसे राक्षस की तरह खड़ा है जिससे हमारा युद्ध चालू है। उठे तो है आदत अनुसार, लंबे समय की योगियों की आदत है उठने की, परंतु नींद का राक्षस खड़ा है, युद्ध चल रहा है। तो तैयारी में सबसे पहली तैयारी जल्दी सो जाना। और क्या तैयारी करेंगे अमृत वेले के लिए? ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसे थोड़ा सा दूर हटना है सोते समय। श्रेष्ठ संकल्पों से सोना, अव्यक्त मुरली पढ़कर सोना, कम खाके सोना, जल्दी खाके सोना, और सोते समय भी योग का अभ्यास करते करते सोना। हाँ, बाबा से बात करते हुए सोना, ये सब करते हुए सोना, तो कहीं जाके ठीक हो पाएगा। नहीं, तीसरी बात बताई थी बजट चाहिए, करेंसी, बजट किस चीज लगता है इस यात्रा के लिए? बजट, बजट अर्थात पैसा, पैसा अर्थात वहां पर कितना खर्चा होने वाला है। उस यात्रा में देखा जाता है कितने, 10,000 लगने वाले, 20,000 लगने वाले, टिकट कितने की है, ये कितने का है, खर्चा कितना आने वाला है। इस यात्रा में क्या देखेंगे, क्या देखेंगे? समय और कॉन्सेंट्रेशन, पैसा, 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 पैसा बोलता है। पैसा क्या, बड़े बड़े सिंहासन डोलते हैं और पैसा बोलता है, और क्या, कौन सा बजट चिंतन का विषय है, किस चीज की जरूरत पड़ती है, पैसे चाहिए तब उधर पैसे दो तो फिर चीजें मिलती है, इधर सामान, टाइम, अशरीरी अवस्था, श्रेष्ठ चिंतन, क्या हो सकता है, किस पैसे को खर्च करना है, योग के लिए क्या चीज जरूरत है सबसे ज्यादा? सभी राइट है वैसे तो, ज्ञान में रॉन्ग कुछ है ही नहीं। कौन सी चीजों को खर्च करना है योग, जिससे योग, चाह और खर्चा, बजट, बुद्धि की एनर्जी, श्वास, समय, संकल्प, प्यार, तो प्यार पैसा है, स्थिति पैसा है, तन मन धन का क्या, क्या हो सकता है? हाँ, ऊर्जा कितनी लगेगी, शब्द है ऊर्जा, ऊर्जा, और फिर उसमें ये सारी चीजें आएगी जो भी आपने कही, उसमें एकाग्रता भी आएगी, श्रेष्ठ चिंतन भी आएगा, परमात्मा प्रेम भी आएगा, समर्पण भी आएगा। यहां पर ऊर्जा चाहिए, और सबसे बड़ी ऊर्जा है योग के लिए जो चाहिए वो है पवित्रता। ज्ञान कितना भी है जरूरी नहीं योग लगेगा, जो खर्च करनी होती है ऊर्जा, जो चाहिए ऊर्जा वो कौन सी है, प्यूरिटी की ऊर्जा है, सबसे पावर ज्यादा प्यूरिटी की है। हमारा स्ट्रांग पॉइंट अगर कौन सा है सबसे ज्यादा, तो जो हमको दुनिया से अलग करता है, कुछ बातें हमारी ऐसी है जो दुनिया से एकदम हमको अलग कर देती है, स्ट्रांग, बिल्कुल स्ट्रांग। सबसे पहला है जल्दी उठना, वेरा अमृत वेला, दुनिया के सारे लोग सोते हैं हम लोग उठते हैं, ये हमारा एकदम स्ट्रांग पॉइंट है, वन। दूसरा हमारा स्ट्रांग पॉइंट है ज्ञान, हमारे पास ज्ञान है उनके पास नहीं है, स्ट्रांग पॉइंट है। तीसरा हमारा पॉइंट है प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य, जो हम ब्रह्मचर्य में स्थित है, यहां एक ही संबंध है भाई भाई, और कोई संबंध नहीं है, उधर विकार है, यह हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है, हम अलग है उनसे, दुनिया से। फिर खान पान, हमारा भोजन एकदम हमको अलग कर देता है उन लोगों से। तो ये ऐसी चार बातें हैं जो हमारे, हमको संसार से एकदम अलग कर देती है, हमारा कोई मेल नहीं है उनके साथ, कोई लेना देना नहीं है उस इस चीज के, इसमें उस दुनिया वालों से। तो प्यूरिटी की बजट, चौथी पॉइंट बताई ट्रांसपोर्ट, कैसे जाएंगे? यहां बुद्धि के विमान में बैठ के जाना है तो बुद्धि एकाग्र चाहिए, बुद्धि स्थिर चाहिए, बुद्धि भटकी हुई नहीं चाहिए, बुद्धि किसी में अटकी हुई नहीं चाहिए, बुद्धि विक्षिप्त नहीं चाहिए, यहां बुद्धि सालिम चाहिए, बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए, एकाग्र चाहिए, हल्की चाहिए, बुद्धि में ज्ञान भरा हो, झोली में ज्ञान भरा हुआ हो। ये ट्रांसपोर्ट, अगर जहां से जा रहे और गाड़ी बीच में खराब हो गई, खटारा गाड़ी लेके जा रहे तो उसमें वो सारी चीजें, फिर स्विच, स्मृति का स्विच, पेट्रोल, डबल रिफाइंड पेट्रोल, वो सारा जो मुरलियों में कई बार आया है। तो यहां बुद्धि क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट का साधन है, तो बुद्धि को भटकाना नहीं है। और यहां बुद्धि को भटकाने वाली हजार चीजें सुबह से रात तक जो बुद्धि को भटकाती है। उसके बाद में नेक्स्ट भोजन, किस भोजन की आवश्यकता है योग के लिए, श्रेष्ठ संकल्प या ज्ञान कहो, ज्ञान का भोजन चाहिए, बिना ज्ञान के योग नहीं लग सकता। कोई कहेगा कि मैं ज्ञान खाली पढ़ता हूं बस, उसे नहीं होगा, वहां चिंतन चाहिए, अध्ययन चाहिए ज्ञान का, तो पता चले कि योग कैसे करना है। तो कौन सी पॉइंट हो गई है, भोजन। भोजन के बाद रहना कहां है, हमारी यात्रा है, हम परम धाम में जा रहे हैं, तो रहना सूक्ष्म वतन में कितना समय बिताना है, परम धाम में कितना समय बिताना है, सतयुग में कितना समय बिताना है, मंदिरों में कितना समय बिताना है, मधुबन में कितना समय बिताना है, फरिश्ता रूप में आकाश में कितना समय बिताना है, किस किस शहर में जाना है, किस किस देश में जाना है, किस किस से मिलके आना है, किस किस को सकाश देनी है। रहने का भी तो स्थान निश्चित चाहिए, नहीं तो भटकते रहेंगे खाली, वो भी अच्छा ही है, आश्चर्य हो के भटको सुबह सुबह सकाश देते देते। उसमें भी चेकलिस्ट में सबसे पहला मधुबन की यात्रा होनी चाहिए। एक तो सूक्ष्म वतन कंपलसरी है, परम धाम कंपलसरी है, सतयुग गए तो बहुत अच्छा, नहीं गए कभी कभी छोड़ दिया तो भी चलेगा, ऑप्शनल है सतयुग, मंदिर भी ऑप्शनल है, फरिश्ता कंपलसरी है, क्योंकि फरिश्ता बनकर तत्वों को सकाश देना मस्ट है, फरिश्ता बनकर खंडों को सकाश देना, पांच खंड है, मनुष्य आत्माएं हैं, उनको सकाश देना बहुत, प्रकृति के तत्व पांच तत्व, तो भी वो तो मस्ट में आएगा सारा। तो जगह कौन कौन सी होनी चाहिए, उसके बाद में अगला गाइड, हमारा गाइड कौन है, आज की मुरली में भी गाइड शब्द आया है, कहां पर कौन सुनकर आया है, हाँ मंजू बेन पंडा शब्द आया है मुरली में, कहां पर आया है कल नहीं आज है, कल भी था पर आज भी है, मुख्य पंडा कहां है, पुकारते क्या है बाप को, उसको लिबरेट करो, पंडा बन कराओ। तो यहां पर हमारा गाइड कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने किसी देहधारी को गाइड तो नहीं बना के रखा है कि समस्या हुई कि लगाओ फोन करो उसकी नींद हराम, पहले हमारी समस्या सुनो, तुम्हारा बाद में देखना, तुम टाइम वगैरह तुम खा रहे हो सो रहे हो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, खाली हमारी समस्या सुन लो, अब बताओ क्या करना है, और सीधा बताना क्या क्या करना है, डायरेक्ट ऐसा करना है वैसा करना है, और वो बताने के बाद फिर वापस कि वो काम नहीं किया तुमने जो बताया गाइड कौन है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस यात्रा में भी गाइड की आवश्यकता है, जो हमारा हाथ पकड़ पकड़ के हमको ले जाए, क्योंकि यहां पता ही नहीं। तो बाप को अपना गाइड बनाना, तो उसके इतना समीप रहना चाहिए कि उसको प्रश्न पूछने के बाद उत्तर भी सुनाई दे, नहीं तो एक तरफा वार्तालाप चालू है, योग अर्थात ये एक तरफा वार्तालाप चालू है सबका, उधर से कुछ आ ही नहीं रहा है, और आता है तो सुनाई नहीं देता ब्लॉक लिस्ट में तो नहीं डाल के रखा है शिव बाबा को बहुत परेशान करता है रोज मुरली, और मैं तो सुनाता ही है, बीच बीच में कुछ कुछ आते रहता है ऊपर से। तो गाइड एक परमात्मा हो, सारी राय उससे लेनी है, परामर्शदाता है वो, परम परामर्शदाता है, सुप्रीम काउंसिलर है, उससे ना पूछ के देहधारियों से, आज कुछ देहधारी कुछ बताएगा, कल कुछ और बताएगा। तो गाइड, गाइड के बाद में अगला बताया क्या चाहिए, आज दिन भर में क्या क्या करना है, जैसे माउंट पहुंचे क्या क्या देखना है। तो योग का भी बहुत सारे टारगेट निश्चित करने हैं कि आज योग में ये चार चीजें मुझे करनी है, और जब तक वो चार नहीं होंगे उठेंगे, चार पूरे होने के बाद ही उठेंगे। ये पांच चीजें आज करनी है। नुमा शाम का योग है, मुझे युमा शाम के योग से पहले पहला काम करना है अपनी दिनचर्या को रिव्यू करना, सुबह से रात तक क्या क्या किया। दूसरा, साकार मुरली की सारी पॉइंट्स याद करने की कोशिश करना। ये दो काम होने के बाद योग चालू, फिर योग चालू होगा। और उस योग में क्या क्या करना है, अशरीरी बनना है, बाबा से बातें करनी है, खाली बातें ही करते रहना है या और भी कुछ करना है, बहुत सारी चीजें है उसमें मस्ट। तो वो हो गया टारगेट, योग में क्या क्या करना है। उसके बाद में अगला बताया शॉपिंग, क्या क्या शॉपिंग करके आएंगे, शुभी रस भी क्या जाना नहीं, और क्या क्या शॉपिंग सतयुग में पहले यहां से चालू करो। सूक्ष्म वतन में क्या क्या खरीद के लाएंगे, दो चार फरिश्ते की ड्रेस एक्स्ट्रा भी चाहिए, पूरी हमारी अलमारी भरी चाहिए, नहीं तो कहेंगे हमारे पास ड्रेस ही नहीं है आज। ताज लेके आना, पवित्रता का सोमान की मालाएं खरीद के लाना, अच्छी अच्छी मालाएं लाना, अच्छी क्वालिटी की, नहीं तो लाओगे एकदम नकली चालू जो काम नहीं करेगी, नकली रुद्राक्ष। और क्या लाएंगे, प्यूरिटी के कंगन, तो वो सारे श्रृंगार की चीजें लेके आना, अच्छी एक मंजूषा तैयार करना, उसमें ये सारे जवाहरात भर के लेके आना, मंजूषा होती है ना बड़ी सी। उसके बाद में परमधाम से क्या लाएंगे, परमधाम की शांति लेके आना, एक साइलेंस। दूसरा, परमधाम की मुक्ति साथ में लेके आना, जो मुक्ति अवस्था है वहां भी। फिर परमधाम की निराकारी स्थिति साथ में लेके आना। फिर परमधाम का साइलेंस और शांति, ये दो अलग अलग चीज है। वहां की शांति साथ लेके आना, वहां की मुक्ति साथ लेके आना, वहां का साइलेंस साथ लेके आना, वहां का निराकारी स्थिति साथ लेके आना। निराकारी खान कल बोला था ना, निराकारी खान है, अविनाशी खान है, एक ही बार मिलती है, सस्ती खान है, बहुत सारी चीजें कल आई थी। तो परमधाम में की जो अनुभूतियां है वो साथ में लेके आना, ये शॉपिंग करके आना। सतयुग से क्या शॉपिंग करके आएंगे, सतयुग की शॉपिंग, स्थूल 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 सतयुग की शॉपिंग, दो चार देवताओं को लेके आएंगे, आज तक तिलक लेके आ जाना, वहां से एक आधा महल लेके आ जाना बैठने के लिए, अपने हाथ में है कुछ भी लेके आ सकता, पुष्पक विमान सबसे मेन चीज है, वो लेके आ जाना। और एक चटाई लेके आना, जादुई चटाई, जादुई चटाई सबसे अच्छी, उसमें बैठो और अलादीन की तरह घूमो, जहां घूमना है इधर जाओ उधर जाओ घूमते रहो। और वहां से कुछ जिन बिन भी लेके आना, अगर मिल जाए तो बांसुरी लेके आ जाना, बीच बीच में बजाते रहना। अभी हम एक जगह गए थे, वहां एक भाई था, वो म्यूजिशियन था, पीछे ही पड़ गया, उसने वो एक ये दिया बजाने का, वो कह रहा इसका प्रैक्टिस करना और सिखाया ऐसे ऐसे करना, अभी पड़ी हुई है। तो ये हो गया शॉपिंग। अगली पॉइंट, हाँ नहीं, एंटरटेनमेंट बाकी है, नहीं रिचुअल्स, सॉरी रिचुअल्स। रिचुअल्स में इस याद की यात्रा में एक तो स्नान करके आना नदी में, सतयुग में अपना सूक्ष्म वतन में कोई नदी वगैरह बह रही होगी तो थोड़ा स्नान करके आ जाना, कोई शास्त्र विस्त्र पढ़ के आना, अर्थात मुरली रिवाइज करके आ जाना सूक्ष्म वतन में, ज्ञान स्नान करके आ जाना, डुबकी मार के आ जाना, कोई सत्संग वगैरह चालू हुआ, बाबा बैठा हो, दादियां बैठी हैं, वहां जाके बैठ जाना चुपचाप, क्या सुना रहा है, देखो आज बाप दादा अब वो दादियों से मिल रहे हैं, एडवांस पार्टियों से मिलते रहते हैं ना, तो उनकी भी तो बातें थोड़ी सुननी पड़ेगी ना, क्या कर रहे हैं बाबा की गुप्त मीटिंग चालू है। तो जो मीटिंग्स चलती है प्राइवेट टॉक्स, वहां थोड़ा सुन के आ जाना, ये क्योंकि यात्रा इसमें ये रिचुअल्स है। उसके बाद में है, उसके बाद में एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट क्या क्या करेंगे, बाबा से पिकनिक करना है सूक्ष्म वतन में, कई बार मुरलियों में कहा ज्ञान सूर्य से किरने लो, चंद्रमा से शीतलता लो, पिकनिक पे जाओ, अलग अलग देशों में जाओ, पांच खंडों में, कभी ऑस्ट्रेलिया जाओ, कभी यूरोप जाओ, कभी अमेरिका, कभी अफ्रीका, अफ्रीका के घने जंगलों में जाओ, कभी अमेजॉन के घने जंगल में जाओ, कहीं पे भी यात्रा कर सकते हैं, एनीवेयर। स्वीट का पहाड़ क्या साथ में चल रहा है? तो कहां थे हम? एंटरटेनमेंट, किसी भी तरह की एंटरटेनमेंट, कोई भी एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। योग हमारा एंटरटेनमेंट बन जाए, योग खींचने लगे कि अरे मुझे जाना है जाना है जाना है, कुछ खेल कूद करनी है, सूक्ष्म उदन में जाके थोड़ा सा क्रिकेट, वॉलीबॉल, रास, भांगड़ा और कुछ भी करके आओ, तो एंटरटेनमेंट। उसके बाद में एंटी थेफ्ट मेजर, चुरा कौन कौन चुरा था इसमें, आज की मुट्ठी में माया जबरदस्त है, तो यहां पे चोर बहुत है, ठग तो रास्ते में इतने मिलेंगे पता नहीं, सच्चाई के रास्ते में ठगों की कमी नहीं है। हाँ, परीक्षा तो बहुत है। तो इस यात्रा में देखना है, मैं जैसे ही योग में बैठता है क्या होता है, अभी तक तो ठीक है, योग में बैठते ही खुजली चालू हो जाती है, योग में बैठते ही पैर की हलचल चालू हो जाती है, योग में बैठते ही कुछ ये स्थान बदलते, ये ठीक नहीं, अभी उधर बैठता हूँ, चेयर पे बैठता हूँ, फिर वहां बैठता हूँ, फिर वहां बैठता हूँ, फिर योग में बैठते आधा टाइम तो कोई लोग ये इसको ही सेट करने में लगा देते हैं। इतना टाइम तो इसमें चला जाता है और किसी किसी का टाइम किसी का मोबाइल में बज रहा है, उसको शिक्षाएं देने में, उसको बताने में, जो कम जोर से बोलो वो सब में चला जाता है। बहुत सारी माया है। एंटी थेफ्ट मेजर देखने हैं कि हमको कौन डिस्टर्ब करता है योग में, कौन से संकल्प आ जाते हैं अचानक से जो डिस्टर्ब कर जाते हैं। उसके बाद में बताया करके आए तो उसके बाद में क्या देखना है कि हमने क्या क्या सीखा आज की यात्रा से, कौन सी नई बातें आज मुझे पता चली, आज जो आज तक किया नहीं था योग में जो आज किया, किस आत्मा को टच किया आज सुबह, जो किसी आत्मा को हमने टच किया, सारे दिन भर फिर देखना है क्या वास्तव में उसे टचिंग हुई या हमारी टचिंग लौट कर आ गई। पूछते ना उसको, आज कुछ लगा क्या तुमको, ऐसे कुछ अलग सा लग रहा है? वो कहेगा कुछ नहीं लग रहा है, बताना मत, पर हमने कुछ किया था सुबह। उसको बताना नहीं, ऐसे पूछना, इनडायरेक्ट पूछना, आज तुमको कुछ ऐसी प्रेरणा आ रही है कुछ मुरली वगैरह पढ़ने की वगैरह, बदले बदले लग रहे हो, क्या बात है? तो वो कहेगा कुछ नहीं, आज तो मुझे ज्यादा ही कुछ करने की दूसरी इच्छा हो रही है, तो मतलब गड़बड़ हो गई है। तो लास्ट पॉइंट है यादगार है, ये तो हो गया लर्निंग। फिर यादें, उन पलों को याद करना है, ये हम बहुत कम करते हैं, उन पलों को याद करना है जिसमें हम बाबा की याद में खो गए थे, वो याद कैसी थी, वो योग जो कल लगा था वो आज क्यों नहीं लग रहा है, वो योग जो कल बैठे थे और एकदम शरीर जैसे गुम हो गया, विदेही हो गए, एकदम सीधा बाबा के पास पहुंच गए, उसकी यादों से भर गए, उसको उसने क्या क्या प्राप्ति हुई वो सामने आ गया, इतना अविनाशी खजाना मिल रहा है। यादगार, तो ऐसी 12 बातें हैं जो उस यात्रा में की जाती है जो हमको अब आज इस यात्रा में करनी है। ठीक है, ओम शांति।